ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस 22 मई के संध्या जागृति कार्यक्रम में अधिक मास में आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सब लोग जानते ही हैं कि अधिक महीने में, पुरुषोत्तम महीने में, जो भगवान की कथा सुनता है उसको अनंत लाभ होता है। एक जगह पर बैठकर हम केवल एक ही स्थान में जा सकते हैं। जैसे नासिक गए तो केवल गंगा गोदावरी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन कथा में, हरि कथा जहाँ हो रही है उस जगह पर आप जब बैठे हो तो एक साथ आपको सभी तीर्थों का दर्शन करने का लाभ मिलता है, क्योंकि सारे तीर्थ वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ पर हरि कथा हो रही है, और सारे धाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं, सारी नदियां प्रकट होती हैं, सारे पर्वत प्रकट होते हैं, सारे जितने भी पवित्र कुंड हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, 18 पुराण प्रकट हो जाते हैं, सारे ऋषिगण प्रकट हो जाते हैं, नारद मुनि जैसे जितने भी ऋषिगण हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, हनुमान जी आ जाते हैं। तो एक साथ आपको अगर सारे पवित्र चीजों का लाभ चाहिए तो आपको हरि कथा में आके बैठना चाहिए, क्योंकि वहां पर सारे तीर्थ, सारे पर्वत, सारे कुंड, सारी नदियां, सारे संत ऋषि सब एकत्र आकर अपना संग देते हैं। इतना भाग्य है कलयुग में कथा में बैठने का। और जब संत एकत्र होते हैं, भगवान की कथा होती है, तो भगवान का चिंतन होता है। वो भगवान का चिंतन जो है वो आत्मा के लिए बहुत ही पवित्र है, पापों से मुक्त करने वाला है, बंधनों से मुक्त करने वाला है, जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके भगवान की भक्ति प्राप्त कराने वाला है। और यही कार्य जब हम अधिक मास में करते हैं तो उसका लक्ष लक्ष गुना अधिक लाभ मिलता है। सारे संतों को और तीर्थों को, नदियों को आने के लिए अधिक मास की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी कलयुग में अगर कथा करेंगे तो सब जगह आ जाते, सब लोग आ जाते हैं। लेकिन यही चीज जब हम अधिक मास में करते हैं तो उसी चीज का अनेक लक्ष्य लाभ हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग कितने भी आलसी होंगे, कितने भी हमको उत्साह नहीं होगा, कम से कम खुद के हित के लिए अधिक मास में हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। और अगर आप खुद नहीं अरेंज कर सकते हरि कथा, बहुत खर्चा है उसमें, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, तो संध्या जागृति में आइए, प्रभात जागृति में आइए। कोई और व्यवस्था कर रहे हैं और आप, आपको आना है, केवल बस बैठना है और सुनना है, प्रसाद भी मिलेगा, एयर कंडीशन भी ऑन रहेगा गर्मी के समय, खाली एक ही काम करना है, सोना नहीं है आपको, क्योंकि इतना कंफर्टेबल हो जाएगा तो नींद आने का संभावना है। तो यही समझना है कि कई बार परम भाग्य जो है ना वो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोई परम भाग्य वाली परम कीमती परम मूल्यवान वस्तु अगर आसानी से मिलती है ना तो उसका हम वैल्यू नहीं करते, कीमत नहीं करते उसकी। तो मनुष्य जन्म जो है वो बुद्धि के साथ दिया गया है, तो मूल्यवान वस्तु की मूल्य समझने की बुद्धि भी आपको दे दी गई है। तो जब वो मिल जाती है तो बड़े आराम से भी मिलेगी, फिर भी आपको उसका मूल्य कम नहीं समझना चाहिए। वैसे ये हरि कथा है, हरि कथा ये भगवान का हमारे लिए दिया हुआ बड़ा वरदान है। भगवान हरि लीला करते इसलिए हैं कि हम और आप उसका वर्णन कर सके, हमारे लिए, हमारे जिह्वा के लिए और हमारे कानों के लिए हरि कथा जैसा और कोई श्रेष्ठ विषय नहीं है। हमारे कान उसी के लिए बनाए गए हैं कि हम हरि की कथा सुने, हमारी जुबान उसके लिए बनाई गई है कि हरि का नाम हम ले सकें। अगर ये दो पांच इंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय दो हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा इंद्रिय है, तो कान है, जिसकी सुनने की शक्ति चिरंतन काल तक रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। आपकी आत्मा शरीर में है या शरीर छोड़ के जा चुकी है या भूत प्रेत की अवस्था में है या और किसी अन्य योनि में है, कुत्ता बिल्ली या मछली मच्छर की योनि में है, या आत्मा अमर होती है ना, तो जहाँ तक जब तक आत्मा है वो अमर है, तब तक सुनने की शक्ति भी अमर है। और अगर आपको इस केवल जीवन का विचार करना है, इस जीवन का, तो इस जीवन के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि अंतिम क्षण तक सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति बनी रहती है। पेशेंट कोमा में भी हो तो भी सुनने की शक्ति बनी रहती है, वो आपको प्रतिसाद नहीं दे पाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सुन जरूर पाएगा जो आप उसको बता रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि आप जोर से चिल्ला के उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम सुन रहा है, ऐसा भी नहीं। आपकी आत्मा की आवाज भी वो सुन सकता है, अगर आप मन में भी तीव्रता से पुकार रहे हो तो भी वो आवाज उसकी आत्मा सुन सकती है, ऐसी शक्ति है श्रवण शक्ति। जो आपके डेसिबल के यंत्र में अगर उसका मेजरमेंट नहीं हुआ तो उसका मतलब सुनाई नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। वो ये आत्मा की आवाज, आत्मा से निकली हुई आवाज आत्मा तक पहुंच जाती है। तो हमारे लिए बेस्ट समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे लिए जरूरी यह है कि समझना कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक मरीज आपके तरफ से जिंदा है आपके हिसाब से, वो आपकी बात सुन सकता है, आपको उसको सुनाना चाहिए। और उसके बाद वाला जो महत्वपूर्ण इंद्रिय है वो आपकी जिह्वा है, टंग, जिससे आप ध्वनि उच्चारण करोगे और कान से सुनोगे। भगवान ने अपना नाम भी उसी के लिए दिया है, ताकि आप उनका नाम उच्चारण करें और आपके कान से आप सुने, जब कोई उच्चारण करेगा आप उसको सुनेंगे कीर्तन में। और भगवान की उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे ही आप उच्चारण करेंगे उस ध्वनि में भगवान उपलब्ध हैं, भगवान ने अपने आप को उस ध्वनि में अर्पण कर दिया है, अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है उसके अंदर, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आवाज आपकी है, अपने आप को अर्पण करना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वो आवाज जो उनके अस्तित्व से भिन्न नहीं है, वो आवाज जो वो स्वयं है, वो जब आपके कान में प्रवेश करती है तो आपके हृदय में प्रवेश करती है वहां से, और हृदय को स्वच्छ कर देती है, सभी अनंत जन्मों के संचित से जमा किए हुए पापों से मुक्त कर देती है। और हो सकता है कि आपको नाम करते समय नींद आ जाए, या आपका अटेंशन कहीं और हो, या आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो और उन्होंने, भगवान ने और एक कार्य करके रखा है, वो है हरि कथा। वो आके अनंत प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, ताकि आपको सुनने के लिए और जगह रहने के लिए कुछ मौका मिले। क्योंकि कैसा होता है ना, जब कथा सुनते हैं ना, तो कथा में आप ज़्यादा जगह रह सकते हो, क्योंकि कथा में एक ऐसा स्टोरी है ना, पूरा आपके आंखों के सामने पूरा सीन तैयार हो जाता है, थोड़ा सा कुतूहल भी निर्माण होता है, अभी क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस तैयार होता है, तो एक इंटरेस्टिंग विषय होता है। इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान को ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, इतना सा रूप धारण करके भगवान जा सकते हैं, या विशाल रूप धारण कर सकते हैं, तो इतना रूप धारण करके अगर उसके मेन एवर्टा में चले जाते उसको काट डालते वहां से, तो अंदर ही ब्लीडिंग होके मर जाता बिना किसी घाव के बाहर से। अरे ऐसा अगर वो करते तो हमें कदर मौका मिलता लंबी कथा करने का, तो लंबी कथा करना चाहिए, इसलिए वो हाफ लायन हाफ मैन नरसिंह के रूप में आए, खंभा तोड़ के आए, नाखून से फाड़ दिया, हाथों का माला बनाया, हाँ क्या क्या किया उन्होंने ऐसे। फिर ऐसा कहते कि पेट फाड़ दिया ना तो अंदर हाथ डाल के ऐसा हार्ट को भी ऐसा फल की तरह तोड़ दिया, ऐसा फेंक दिया जमीन पे उसको। मतलब एक्शन, इसमें एक्शन है, एक्शन, इमोशन, सस्पेंस सब है उसके अंदर। आपके आपको सुनने में आनंद आ जाए ना उसमें, नहीं तो क्या आनंद आएगा आपको। इज नो थ्रिल ना, थ्रिल चाहिए आपने को। ऐसे हमारे भगवान सर थ्रिलिंग एक्टिविटी करते हैं हमेशा, हर चीज में रोमांस है, सनसनीखेज भाव है, सस्पेंस है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। आपको सबको मालूम है कि प्रहलाद का ड्रामा चल रहा है, तो बच्चे बोलेंगे वो देखो देखो खंभा है ना, खंभा वो उसके पीछे छुपा हुआ है, वो आएगा उधर से। अभी सबको मालूम है, सबको पता है, लेकिन फिर भी आप देखने को जाते हो ना। आपने वो ड्रामा जो है ना, कभी ऐसा एक ड्रामा में हमने ऐसा ईट रखा था, ईट ऐसा ऐसा खड़ा करके, उसको प्लास्टर नहीं किया था, ऐसा रखा था, तो नरसिंह भगवान को ऐसा ईट ऐसा धक्का मार के ऐसा आना था। तो एक बार किया था, एक बार खंभा जो है ना ऐसा, वो दो हिस्से थे उसको जोड़ के रखा था, उसको ऐसा बाजू में करके आना था। ऐसा अलग अलग वैरायटी हमने किया है उसके अंदर, लेकिन हर टाइम उसको देखने में जो आनंद है ना, वो हर टाइम नया आनंद प्राप्त होता है उसके अंदर। और अगर आप कोई ऑर्डिनरी पिक्चर देख रहे हो और आपको वो सीन अगर बार बार दिखाया जाए, भगवान का नहीं है वो और किसी फिल्म स्टार का है, आपको बोर हो जाएगा वो, एक ही दो बार देखेंगे तो बंद हो जाएगा आपको, बस हो गया है बोलिए। लेकिन भगवान के विषय में वही चीज बार 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 मिस्टेक के साथ भी देखेंगे ना, अपने ड्रामा में समझो वो अपने ईंट को मारा, ईंट गिरा ही नहीं समझो। ऐसा होता है कभी कभी ड्रामा में, क्या नहीं होता है, सब होता है, लेकिन वो मिस्टेक के साथ भी लोगों को आनंद आता है उसमें, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो विशेष बात है। ये तो इतने फेमस गाने हो गए अभी, हमारे बचपन में इतने गाने थे फेमस, आज किधर है वो। कभी एक बार बजते तो लोग हाँ ये तो हमारे जमाने का बहुत सुंदर गाना है, लेकिन बार बार नहीं गा सकते हो वो। एक नवरात्रि में पक जाते हैं हम लोग, एकदम स्टार गाना जो है ना वो सबसे ज्यादा पैसा कमा चुका है, वो नवरात्रि में इतनी बार बजाते हैं ना कि बोले बस अभी कोई दूसरा गाना बजाओ, होता है ना कैसे, क्योंकि वो भगवान संबंधित नहीं है। लेकिन वही गाना होता है ना, केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोड़वा, वो तो मैं इतना सोता ना तब से सुन रहा हूँ और अभी भी सुन रहा हूँ। अभी भी कभी भी सुनते हूँ, इधर गणपति में सुनता हूँ या रेडियो में सुनता हूँ, आनंद आता है उसके अंदर सुनने में। ये अंतर है। विषय क्या है आपका, विषय चर्चा का विषय क्या है, श्रवण का विषय क्या है, बोलने का विषय क्या है, ड्रामा का विषय क्या है, फिल्म का विषय क्या है, नाटक का विषय क्या है, उस पर उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन का आनंद मिलेगा कि नहीं, वो डिपेंड रहता है। इसलिए वो हरि कथा सुनना जरूरी, क्योंकि हम सब लोग हरि के अंश हैं, इसलिए हरि की कथा सुनने में आनंद आता है। और कुछ लोगों को क्यों नहीं आता है, क्योंकि हरि के अंश होने के बावजूद भी वो इतने ढक चुके हैं माया से, इतने ढक चुके हैं कि वो खुद भी भूल चुके हैं और लोग भी भूल चुके हैं कि हरि का अंश है, इसलिए उनको रुचि नहीं आती। लेकिन जब वो आवरण माया का निकल जाता है तो स्वतः ही अंदर से ही वो हरि के विषय में रुचि उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है, अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं भी आपको अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन पैदा करना ये जीवन का उद्देश्य है। अगर इसको अट्रैक्शन आकर्षण उत्पन्न किए बिना आपकी जिंदगी अगर समाप्त हो जाती है तो निश्चित मान लो कि वो वेस्ट चली गई और दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि कैसा होता है ना, जो चीज़ हम लोग इसका मूल्य नहीं समझते हैं या मूल्य नहीं देते हैं उसको, वो चीज़ हमको दोबारा नहीं मिलती है, वो आपसे छीनी जाती है। पर ऐसा हाथ रखो बैठो आप 8 दिन ऐसे ऐसे रखो, 7 दिन खोलो ही नहीं उसको, सोते हुए भी ऐसे रखो, और 8वें दिन उसको खोलने का प्रयास करो, आप खोल नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि जो प्रकृति की सुविधा है ये चलाने की, आपने जब छोड़ दी उसको तो प्रकृति वो सुविधा आपसे ले लेती है, फिर क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, आगे नहीं बढ़ेगा, तो बहुत फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, इच्छा बताना पड़ेगा मेरे को घुमाना है उसको, फिर वापस धीरे 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 आएगा वो फैसिलिटी। उसी तरह से भगवान के विषय में आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो भगवान आपका मनुष्य शरीर ही छीन लेंगे। और जिस जीवन में, जिस योनि में भगवान का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे योनि में जन्म लेंगे हम, जैसे जानवर का, पंछी का, मच्छर का, कीटकों का, सर्पों का, मछली का, पेड़ का, वैसा जीवन स्वीकार करेंगे, आपकी इच्छा से अनुसार भगवान करेंगे। इसलिए ये जीवन में इच्छा है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, हरि कथा का आयोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सुनने से फिर उसमें आकर्षण रुचि पैदा होती है। जिस चीज को बार बार सुनते हैं हम लोग, तो उसमें हमको इंटरेस्ट पैदा होता है। बार बार कोई बताएगा आपको कि उस जगह पर एक पैंट पे दो पैंट फ्री मिल रहे हैं, एक पैंट पे दो पैंट मिल रहे हैं, आपने एक बार दुर्लक्ष किया, बार बार सुनाई पड़ रहा है, तो फिर आप वहां पर जाने का सोचेंगे कि जाऊंगा, देख के आता हूँ क्या है क्या नहीं है, कितनी बार सुना है आपने। और नापसंद का गाना भी अगर नवरात्रि में 10 बार बजता है ना, तो आप 11वीं बार अपने आप सुबह ब्रश करते करते गाने लगेंगे, उसको गुनगुनाने लगेंगे, है कि नहीं? यू डोंट नो, यू डोंट लाइक इट, बट ऐसा वो बम्बार्डिंग अपने कान पर हो गया है कि 11वें दिन सुबह उठते ही वो मन में गूंजते गूंजते आप उठेंगे, आपको पता नहीं चलेगा अरे आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं। वो हमारा स्वभाव है। इसलिए बेहतर यह है कि अगर भगवान में आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन भगवान के विषय में बार बार सुनना अच्छा है, क्योंकि वो आपके कल्याण में काम आएगा, आपका कल्याण उसके अंदर है। इसलिए आज हमने संध्या जागृति में भगवान वामन देव की कथा बताने का विचार किया है, और वो कथा इतनी लंबी है कि वो 2 सत्र में चलेगी, आज के मंगलवार में और 30 तारीख के मंगलवार में, 29 तारीख के मंगलवार में। हाँ, पार्ट 1 आज, पार्ट 2 29 तारीख को। तो कथा भागवत में आती है 8वें स्कंद में। भागवत में कितने स्कंद है? भागवत में 12 स्कंद है। 9 स्कंद में वहां पर भक्तों का चरित्र का वर्णन दिया है। 10वें स्कंद में भगवान की, प्रत्यक्ष भगवान की लीलाओं का 89 चैप्टर में वर्णन किया है। और 11वें 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन और बहुत सारे अदर बाकी उद्धव गीता ऐसा का वर्णन है। टोटल 12 स्कंद है। तो पहले 9 स्कंदों में अलग अलग भक्तों के चरित्रों का वर्णन आता है। तो 8वें स्कंद में भगवान वामन देव की कथा आती है। केवल भक्तों का चरित्र नहीं है, लेकिन भगवान के अवतारों का भी वर्णन है। वृषभ देव भगवान का वर्णन है, जैसे मॉर्निंग प्रेयर में पृथु महाराज का वर्णन चल रहा है, वो भी भगवान के अवतार हैं। फिर परशुराम जी का अवतार का वर्णन है, प्रभु रामचंद्र के अवतार का वर्णन है, फिर वामन देव का 8वें स्कंद में है। हरि मेधा हरिणी के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान जब हरि के रूप में प्रकट होकर गजेंद्र को बचाया, वो भी कथा 8वें स्कंद में आती है। ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के अलग अलग कथाओं का वर्णन आता है। तो ये कथा की शुरुआत ऐसी होती है कि बलि महाराज जो है ना, वो प्रहलाद महाराज के पुत्र के पुत्र हैं। प्रहलाद महाराज की कथा 7वें स्कंद में आती है। वो कथा इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि एक पूरा स्कंद जो है ना, कई अध्यायों का एक पूरा 7वां स्कंद जो है वो प्रहलाद की कथा का है। वो किसी और समय बताएंगे। प्रहलाद को जब भगवान ने कृपा किया, उसके पिताजी का वध किया, तो प्रहलाद को उसके भगवान ने, नरसिंह भगवान ने बहुत विनती किया कि कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। अभी हमेशा अक्सर क्या होता है, भक्त जाके मांगते रहता है, मुझे ये दो मुझे ये दो मुझे ये दो, भगवान दर्शन ही देते नहीं, फिर बाद में आते हैं धीरे से दर्शन देने के लिए, कभी कभी प्रसन्न हो गए तो। लेकिन आमतौर पर मांगने वाले हम होते हैं, और भगवान चाहे जवाब देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। नरसिंह भगवान उनको बोल रहे हैं कि मेरे लिए तुमने कितना सहन किया, कितना कष्ट उठाया मेरे लिए, अगर केवल अपने पापा को यस पापा बोलते ना, तो इसमें से कुछ भी नहीं होता जो आपको हुआ। सही बात है ना? उसके पापा का क्या कहना था, विष्णु को मत मानो, मुझे मानो, मैं ही भगवान हूं, कोई विष्णु विष्णु नहीं है, जो भी कुछ हूं मैं हूं, सृष्टि का नियंता मैं हूं, मालिक मैं हूं, कंट्रोल करता मैं हूं, ये विष्णु को भूल जाओ और पूरा विश्व को मैं मेरा मंत्र दे रहा हूं, तुम भी मेरा मंत्र जपो। तो पापा को उसने बोला, नहीं पापा ये सत्य नहीं है। इतना सिंपल तरीके से बोला कि आप नहीं हो भगवान, भगवान वो दूसरे हैं। तो केवल उनको अगर अपने पिताजी की सारी प्रॉपर्टी, तीनों लोकों की, अधिकार, ऐश्वर्य, संपन्न, प्रभाव, शक्ति, जो भी कुछ था पापा के पास, वो सब उनका ही था ना। वो केवल यस पापा बोलने से उनको मिलने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने असत्य का आधार लेकर अपने पिताजी को हां नहीं कहा। जान की बाजी लगा कर भी उन्होंने पिताजी को सत्य ही बताया, डरे नहीं। वो पिताजी को बताया कि पिताजी आपको भी विष्णु का नाम लेना चाहिए। तब उनको और क्रोध आया, तलवार उठाया उन्होंने मारने के लिए, फिर भी वो डरे नहीं। बोले कि नहीं, यही बात सत्य है, आपको भी वन में जाना चाहिए, वन में जाकर उनको पुकारना चाहिए। इतनी हिम्मत थी उस बालक के अंदर। वो हिरण्यकश्यप भवे ऊपर उठाता था ना ऐसे, तो इंद्रादि देवता कांपते थे आकाश में, केवल भंवरों को हिलाने से, ऐसे क्रोध से। ऐसी उसकी शक्ति थी, वो इधर बैठा है पृथ्वी पर और उधर देख रहा है, ऐसा उठाया भंवर तो सब देवता लोग कांपते थे, भाग जाते थे। ऐसे व्यक्ति के सामने वो बोल रहे हैं प्रहलाद जी, इतने से बालक 5 साल के, पिताजी आप विष्णु का नाम लो। फिर पिताजी ने बहुत अत्याचार किया उसके ऊपर। तो वो प्रसंग यह है कि नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में प्रहलाद से संवाद कर रहे हैं कि बेटा प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत ऋणी हूं। भगवान बोल रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल टू यू, कुछ मांग लो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपका ऋणी हूं बहुत। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, हे भगवान, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन कि मैं कुछ करूंगा और आपसे कुछ चाहूंगा उसके रिटर्न में। नहीं, मैंने ये सब कुछ कुछ एक तो पहले तो कुछ मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ आपने ही किया है। क्योंकि जब मुझे हाथी के पैर के तले दिया तो हाथी ने पैर रखना ही नहीं रखा, सांप के बिल में डाल दिया तो सांप ने मुझे काटा ही नहीं, अग्नि में डाल दिया तो अग्नि ने जलाया नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं तो खाली बैठा रहा, मैंने एक ही काम किया, आपका स्मरण करता रहा मैं, बाकी जितने संकट आए उसने आपने ही मुझे बचाया, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन मैं भी इससे एग्री नहीं हूं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो कहते मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं लेन देन का व्यवहार करने के लिए नहीं आया हूं। फिर भगवान जिद करते हैं उससे कि आपको लेना ही है कुछ। तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरे पिताजी है ना, ये बेचारे बड़े बहुत पापी हैं, इन्होंने इतना पाप किया है ना, मेरे पर अत्याचार किया इसलिए नहीं, ओवरऑल उन्होंने इतना पाप किया है कि ये निश्चित नरक में जाएंगे अनंत जन्मों तक, इन्हें आप अगर थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं तो अच्छा है, कंसेशन। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर वाक्य बताया उस समय, बहुत सुनने लायक है वो, बहुत याद करने लायक है। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जो है ना, वो बहुत विरला होता है, बहुत दुर्लभ, बहुत ही रेयर होता है। तुम्हारा होना आज भी ये सत्य है कि पूरे भागवत में प्रहलाद की एक ऐसी कथा है जो चैतन्य महाप्रभु ने सैकड़ों बार सुनी है, वो एक दिन में कुछ सैकड़ों बार सुनते थे उसको जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो गदाधर पंडित उनको सुनाते थे। तो प्रहलाद की एक कथा उन्होंने कई हजारों बार सुनी है, इतना आनंद उनको उसमें आता था। क्योंकि प्रहलाद जैसे श्रेष्ठ भक्त का, ऐसे कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ भक्ति किसे सीखनी है तो प्रहलाद का चरित्र पढ़ो, ऐसे कहा है। कितनी आचार्यों ने कहा है, भगवान ने भी स्वयं कहा है, अगर भक्ति क्या चीज है अगर समझना है आपको तो आप प्रहलाद जी का चरित्र पढ़ो। तो भगवान कह रहे हैं कि आप प्रहलाद हो, आपने इतना श्रेष्ठ उदाहरण स्थापन किया है कि आपके पिताजी का तो छोड़ ही दो, वो तो आपकी दूसरी वाली आगे वाली पीढ़ी ना, आपके आगे वाली पिताजी को लेकर और 9 पीढ़ियां, मतलब टोटल 10 पीढ़ियां आपके आगे वाली, मतलब इतिहास वाली, आपके दादा परदादा पीछे वाली इतिहास वाली, वो 10 पीढ़ियां आपकी एक पीढ़ी जिसमें आप हो, आपके भाई बंद है, और आपके आगे आने वाली 10 पीढ़ियां जो अभी आई नहीं है, आएगी अभी, वो सब लोग आपके होने की वजह से मुक्त हो जाएंगे। कितना बड़ा वरदान दिया, देखो 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दिया एक प्रहलाद के वजह से। तो सब परिवार में क्या जरूरी है, एक प्रहलाद होना जरूरी है। तो हम क्या कहते हैं, ये तू बनेगा ना प्रहलाद, नहीं तो तू बनना, नहीं तो तू बनना, है ना। ऐसे हमारे गौरांग प्रभु जी ने एक जगह प्रवचन दिया बहुत जोरदार, उसमें ये बात बताया। तो उसमें कुछ गौरांग प्रभु के ब्रदर सिस्टर भी आए हुए थे, रिश्तेदार भी आए थे, तो उन्होंने ये कथा सुनी, क्योंकि तो मेहमान के रूप में आए थे तो बैठ के सुनी कथा। और कथा बोलने के बाद में जब कथा समाप्त हुई ना, तो ये सब रिलेटिव आए उनके पास बोलना, उनका नाम गणेश भी है घर का, बोले गणेश अच्छी भक्ति करना आप बहुत अच्छी तरह से। मतलब क्या, हम अपनी मजा करते रहेंगे, आप अच्छी भक्ति करके प्रहलाद जैसे बन जाना, ताकि हम लोग अपने आप रेडीमेड मुक्त हो जाएंगे। ऐसा लोगों का भाव होता है, मतलब प्रहलाद बनना है मुझे नहीं बनना है, आपको बनना है, वो आप मेहनत करो फिर उसका फल मैं खाऊंगा। खैर मजाक तो बाजू में, लेकिन एक प्रहलाद की वजह से उन्होंने वरदान दिया कि आपके सारे पीढ़ियों का उद्धार करूंगा मैं। तो यह प्रहलाद को बच्चा होता है विरोचन, है तो राक्षस का कुल ना, वो राक्षसी गुण भी है, राक्षसी काम भी, सब कुछ राक्षसी है, देवताओं के खिलाफ शत्रुत्व भी है उनके मन के अंदर, लेकिन फिर भगवान ने उनका वध नहीं किया। फिर विरोचन को पुत्र हुआ बलि। अभी बलि की कथा इसी की कथा जोड़ के आई है। तो बलि बड़ा महापराक्रमी दैत्य था, महापराक्रमी, कई बार उसने देवताओं से युद्ध किया, कई बार देवताओं को परास्त किया, कभी वो हार गया, कभी उसने देवताओं को परास्त किया। तो एक बार देवताओं ने बलि का वध कर दिया, मार दिया उसको, लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी पिलाकर फिर उसको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य के पास वो शक्ति थी संजीवनी, तो वो दिलाकर उसने बलि को फिर जिंदा कर दिया। फिर बलि ने पूछा कि अभी बार बार ऐसे होना थोड़ा कठिन काम है, मुझे ऐसा उपाय कराओ आप अभी कि मैं हमेशा के लिए विजयी रहूंगा। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, उससे विश्वजीत यज्ञ कराया, विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया, जिससे वो विश्व को हमेशा जीता हुआ रहेगा, जीतेगा उसको। तो विश्वजीत यज्ञ जब कराया ना, तो कैसा है ना कि आप राक्षस भी हैं या मनुष्य भी हैं या और कोई ब्राह्मण भी है या भक्त हैं, कुछ भी हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना भगवान को बड़ा पसंद आता है, और ब्राह्मणों की सेवा करने से, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती है किसी भी जीव को, कितना भी पतित होगा तो भी। अब ये राक्षस लोग हैं, लेकिन शुक्राचार्य ब्राह्मण हैं और उनके कुल गुरु हैं, तो उनको वो प्रसन्न करते हैं, उनके आधिपत्य में नेतृत्व में अच्छा यज्ञ करते हैं विश्वजीत का। वो यज्ञ करने के बाद में आकाश से एक दिव्य चमकता हुआ रथ उतरता है, उस रथ के ऊपर पीले घोड़े हैं जैसे इंद्र के घोड़े होते हैं, सिंह का ध्वज है, ध्वज के ऊपर सिंह का चिन्ह है, एक गोल्डन धनुष उसमें रखा हुआ है, दो तोनीर रखे हुए हैं, और दो तोनीर ऐसे बाणों से भरे हुए हैं जो बाण को कोई काट नहीं है दुनिया में, छूटेगा तो मार के ही आएगा, ऐसे दिव्य बाणों से दो तोनीर भरे हुए हैं, दो गोल्डन धनुष भी है, और एक दिव्य क्या कहते हैं चिलखत जो पहनते ना छाती पर धारण करते ना युद्ध में, वो दिव्य वो भी उसके अंदर है, और वो कवच जो है ना वो साथ में नीचे उतरता है। तो बलि महाराज को उसके गुरु जी उसको अर्पण कर देते हैं, तो उसी समय वो धारण करता है कवच, दो तोड़ीर पहनता है, धनुष हाथ में लेता है, उसी समय उसके जो दादाजी हैं प्रहलाद जी वो प्रकट होते हैं वहां पर, और स्वर्ग की दिव्य माला फूलों की उसको पहनाते हैं, और शुक्राचार्य शंख देते हैं उनको दिव्य शंख। तो वहीं पर वो शंख जब फूकता है ना, तो वो शंख फूकने से देवता लोकों में कितनी देवताएं हैं वो सब थर्रा उठते हैं उधर भय से, ऐसे शक्ति प्राप्त होती है उसको, ऐसे वर्णन आता है भागवत में दिया वर्णन, कि ये सब धारण करके वो दिव्य रथ में बैठने के बाद में ऐसे वर्णन आता है कि वो अनंत सूर्यों की तरह प्रकाशित थे, का तेज जो है ना वो आंखों में संभाला मुश्किल था, इतना तेज धारण हुआ, और वहीं से वो निकले सीधे इंद्र के राज्य पर आक्रमण करने के लिए। इंद्र की राजधानी अमरावती, यहाँ की अमरावती नहीं, स्वर्ग लोक की जो राजधानी है उसको अमरावती नाम है। कहते हैं कि जब वो जा रहे थे इंद्र की ओर, तो ऐसा उसका वर्णन आया स्वर्ग लोगों का, कितने दिव्य फूल है वहां पर, कितने दिव्य रत्न भरे हुए बैठने की जगह है, नदियां हैं, कुंड है, सुंदर सुंदर फूलों के सुगंध की हवा चल रही है, और ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर खेल रही हैं जिनके शरीर से सुगंध निकल रही है कई कोस मील तक। इतना प्रसन्न वातावरण है कि आप वर्णन नहीं कर सकते उसका। इतने सुंदर बगीचे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने इंद्र के अमरावती के आपस जाकर वापस शंख बजाया तो सारी अप्सराएं घबर गई, डर गए एकदम, वो डर के भाग गई, और देवताओं ने आवाज सुनी, देवता भी डर गए और उसी से बृहस्पति के पास गए। ऐसे नहीं गए सावधान करने के लिए, अस्त्र लेकर नहीं गए वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक दुनिया में भगवान के विषय में कुछ प्रयत्न करना मुश्किल है, बहुत बाधाएं आती है उसके अंदर। माया देवी हमेशा तैयार रहती है आपका ध्यान भगवान से विचलित करने के लिए। एनीवेज, लेकिन फिर भी हमें लगे रहना चाहिए प्रयास पूर्वक। तो देवता लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, वहां पर चर्चा करते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि, वो कहते हैं कि गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना तेज कैसे प्राप्त होगा उसको, हमने तो मार दिया था उसको, ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है ये। तो गुरुदेव बताते हैं कि वो उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा करके ये सारा वरदान और तेज प्राप्त किया है, अभी क्या करना चाहिए। बोले आपके लिए अभी कोई चांस नहीं है, जिस प्रकार से तेज आशीर्वाद शक्तियां लेकर वो आया है, आपको इस युद्ध में जीतने का कोई चांस नहीं है, आप युद्ध करने का प्रयास भी मत करो। तो बोले क्या करो फिर, बोले भाग जाओ भाग जाओ, एक्चुअली लिटरली आप भाग जाओ, अपना अपना पद छोड़ो, अपना राज्य छोड़ो, सिंहासन छोड़ो और छुप जाओ कहीं गुफा में, पर्वत में, जहां जगह मिले उसके सामने मत जाओ। तो जब इंद्र के दरबार में आगे घुसता है तो वहां पर कोई नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई इंद्र नहीं है, कोई नहीं है, सब लोग भाग जाते हैं, अपनी पत्नियों को लेकर सब चले जाते हैं और छुप छुप कर जीने लगते हैं। और वहां पर फिर देखते हैं कोई युद्ध करने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो इंद्र लोक पर कब्जा कर देता है, रहने लगता है वहां पर। फिर वो अपने गुरु से बात करते हैं, गुरु महाराज अभी तो ये सब भाग गए हैं इसलिए मुझे इंद्र का राज्य प्राप्त हुआ है, मुझे ना सबके सम्मति के साथ इंद्र का पद चाहिए। आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपके घर पे आया, तलवार वार लेके आया पूरा, तो आप भाग गए और मैंने कब्जा कर लिया, लेकिन आपकी इच्छा नहीं कि अपना घर मुझे दे दें, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिल से और इच्छा से आपका घर मेरे नाम पे कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, ये देवता अभी जबरदस्ती भाग गए ना, उनको भी आके इच्छा से मुझे नमन करना चाहिए कि आप हमारे इंद्र हो, आप ही हमारे राजा हो, ऐसा कुछ बताओ उपाय। शुक्राचार्य बोलते हैं आप अभी 100 यज्ञ करो, 100 कौन से, अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ मतलब कई हजारों साल लगते हैं उसको करने में, हमारा कैसा यज्ञ होता है 2.5 घंटे में फिनिश हो जाता है वास्तु पूजा हो, गृह प्रवेश हो, विवाह यज्ञ हो, हाँ तो वो तो कलयुग का तो सिंपल सिंपल फॉर्म है वो। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए इतना साधन लगता है, इतने ब्राह्मण लगते हैं, इतना सारा काम होता है, तो वो हजारों सालों में पूर्ण नहीं होता है। ऐसे 100 करने हैं, 100, और 100 करेंगे तो फिर देवता लोग आपको आकर चरण में वंदन करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे इंद्र के रूप में, आप ही इंद्र बन जाओगे। तो ये सब कहाँ हुआ पता है आपको, गुजरात में जगह है, इसका नाम क्या है, भरूच। भरूच का ओरिजिनल नाम क्या है, भृगु कच्छ। भृगु कच्छ मतलब भृगु जी के वंश में शुक्राचार्य का जन्म हुआ था, और भृगु जी का आश्रम उधर भरूच यानी भृगु कच्छ में है। उस जगह पर शुक्राचार्य ने ये 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का प्लानिंग किया, आयोजन किया और यज्ञ शुरू किया। तो 999 यज्ञ जो है ना वो संपन्न हो गए। तब तक देवता लोग छुपे हुए हैं, सोच सकते हैं आप, उनको अपना अस्तित्व नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, अधिकार नहीं है, कुछ नहीं, छुपे छुप छुप के ऐसे फरार के रूप में भूमिगत हो गए सब लोग। और 1000 वही के चलता है ना, तभी तभी अदिति जो है ना, देवताओं की माता जो है ना, उसको बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि मेरे इतने भक्त लोग पुत्र हैं मेरे देवता लोग, क्योंकि अदिति के पुत्र देवता हैं, दीति के पुत्र दैत्य हैं, दानु के पुत्र दानव हैं, राक्षस। तो देवताओं की स्थिति दयनीय अवस्था है ना, अभी इतने पराक्रमी इतने सद्गुण संपन्न लोग होते हुए भी छुप छुप कर डर डर के जी रहे हैं, कोई सम्मान नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है उनके पास, तो बड़ी दुख करती है वो। वो उतना सारा समय उसके पति जो है ना कश्यप मुनि वो ध्यान में लगे रहते हैं। तो एक दिन ध्यान उनका समाप्त होता है तो वो आ जाते हैं घर पे, तभी ये दुखी माता जो है पत्नी उनकी मिलती है उनसे, हरे कृष्णा मिलती है और कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूँ, आपके सारे पुत्र देवता लोग बड़े दुखी हैं और वो ऐसे भटक रहे हैं, उनको राज्य नहीं कुछ नहीं है। तो वो हंसते हैं बहुत, कहते तो देखो कैसे दुनिया की माया है, हाँ ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिताजी है, मेरा पति है, फिर भी कोई बात नहीं, आप प्रामाणिकता से आपके पुत्र भक्त हैं, आप भी भक्त हो तो इसका हम उपाय करेंगे। तो वो अपने पत्नी को एक बार कश्यप मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे पुत्र प्राप्ति को कैसे करना है इसका प्रश्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने जो उनको उत्तर दिया वो अभी इस योग्य समय पर कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बताते हैं। क्या बताते हैं? उसका नाम है पयोव्रत। कितने लोगों को पता है पयोव्रत के बारे में? सुना है आपने? पयोव्रत जो है वो फाल्गुन महीने के प्रथम तिथि से किया जाता है और 12वीं तिथि तक करते हैं उसको। मेरे ख्याल से फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में जो आती है ना प्रथमा, वो प्रथमा से 12वें दिन तक करते हैं, 12 दिन केवल दूध पी के करते हैं उसको। और दूध पी के करने के बाद में फिर रोज जप का नियम लेना होता है कि मैं 108 माला रोज करूंगा या करूंगी, और बहुत सारे नियम है विस्तार में दिया गया। केवल दूध पीना यही व्रत नहीं है, उसमें काफी सारे व्रत है, जमीन पे सोना है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, और यज्ञ करना है, रोज रोज यज्ञ करना है, भगवान के नाम का इतना इतना जप करना है, इतनी इतनी कथाएं पढ़नी है, भगवान का पूजन करना है, और एक बार वस्त्र पहने उतारे तो दोबारा पहनना नहीं है, नए वस्त्र पहनना है, हर चीज का नियम है, ब्रह्मचर्य पालन करना है। वो 12 दिन के व्रत के पश्चात फिर पुत्र प्राप्ति होगी। तो ये अदिति जो है, अभी वर्णन नहीं करूंगा उस व्रत का, बहुत सुंदर तरीके से अदिति उस व्रत का पालन करती है और उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु का सुंदर रूप का वर्णन किया है, कैसे पीताम्बर धारण करके चतुर्भुज भगवान विष्णु, अनंत तेज वाले, अनंत सूर्यों के तेज वाले, अदिति का सारा दुख हर लेते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैं आपके दुख को जानता हूं, आपकी भावना को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं, इसका उपाय मैं बता रहा हूं कि मैं आपका पुत्र बन कराऊंगा और मेरे जो बड़े भाई बनेंगे मतलब देवता लोग, उनका सब दुख कष्ट निवारण करूंगा। तो वो चार भुजा वाले भगवान उनको दर्शन देते हैं और बहुत वार्तालाप करते हैं, बहुत संवाद करते हैं। उसके बाद उनकी आंखों के सामने वो चार भुजा वाले विशाल भगवान जो है वो 5 साल के वामन बनकर प्रकट हो जाते हैं उनके ही सामने। इसलिए कहा गया है कि भगवान वामन का जन्म वैसे नहीं हुआ जैसे हमारा जन्म होता है, नंबर वन, और वो जब प्रकट हुए तो 5 साल के ही प्रकट हुए। मतलब ऐसा नहीं कि अदिति ने उनको दूध पिलाया, फिर गोद में रखा, फिर रेंगते हुए बालकों को बड़ा किया, धीरे धीरे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। स्ट्रेट 5 साल के जनीव धारण करने के उम्र के योग्य हो गए वो। और जैसे ही जनीव वो 5 साल के हो गए ना, जटाधारी बालक बने, स्वर्ण कांति वाले बने, 2 भुजा वाले बने, छोटे से बने। तो जैसे ही वो प्रकट हुए ना वामन देव के रूप में, सारे देवता लोग प्रकट हो गए वहां पर, क्योंकि इतना आनंद हुआ उनको कि भगवान ने दर्शन देके हमारे कष्ट का निवारण करने का प्रयोजन उपाय बनाया है। तो बड़े खुश हुए वो और वहां प्रकट हो गए। किस दिन प्रकट हो गए पता है किसी को? द्वादशी के दिन, श्रावण महीने के द्वादशी के दिन। श्रावण महीने में चतुर्मास में वामन द्वादशी आती है, जिस दिन हमारे राधा गिरधारी मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो वामन द्वादशी तिथि है। अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय उनका जन्म हुआ। तो सूर्य भगवान ने उनको गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति गुरु जी ने जनीव दिया उनको, कश्यप मुनि ने उनको कमरपट्टा दिया, पृथ्वी माता ने मृगाजिन दिया यानी मृग का जो चर्म होता है ना वो ब्रह्मचारी के लिए बहुत आवश्यक होता है, चंद्र ने उसको ब्रह्मदंड दिया, ब्राह्मण जो होता है ना उसके हाथ में एक दंड होता है हमेशा, वो भिक्षा मांगते समय। अदिति ने उनको कोपिन दिया, ब्रह्मदेव ने कमंडलू दिया जो ब्रह्मचारी का एक बहुत सुंदर वस्तु होती है, स्वर्ग देवताओं ने छतरी दिया, इसलिए ब्राह्मण का वामन देव का कैसे हमेशा छतरी लेके आते, फिर सप्त ऋषियों ने उनको कुश घास दिया, कुश घास होता ना कुश घास, उसका उगम कैसे हुआ है, जब वराहदेव आए थे ना तो वो जल के अंदर गए, उन्होंने पृथ्वी को जल से उठाया और ऊपर रखा तो गीले हो गए, तो उन्हें जब अपना शरीर हिलाया ना पानी निकालने के लिए तो कुछ बाल उनके पृथ्वी पर गिरे, जहां पर बाल गिरे वहां पर कुश गवत निर्माण हो गया, जहां पर वो पानी गिरा वहां से काला तिल का निर्माण हुआ, वो दोनों चीज का यज्ञ में उपयोग होता है, काले तिल का भी और कुश का भी। सरस्वती देवी ने उनको रुद्राक्ष मणियों की माला दिया, कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया क्योंकि ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, और अन्नपूर्णा देवी ने उनको पहली भिक्षा दे दी, इस तरह से उनका जनी संस्कार हुआ, और उसी समय वो वहां से भिक्षा मांगने के लिए भरूच पहुंच गए, भृगु कच्छ। ऐसा वर्णन आया कि जैसे वो छतरी कमंडल जनी मृगाजिन सब पहन के हाथ में कमंडल भिक्षा पात्र लेके वहां खड़े हो गए ना, पहुंच गए ना, तो वहां पर अनंत ब्राह्मण थे, तेज वाले, बहुत ज्ञानी और बहुत शुद्ध जीवन जीने वाले, यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज भी पहले विश्वजीत यज्ञ कर चुके हैं, ऑलरेडी तेज प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद में 999 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं, उसका भी तेज उनके पास में है, 1000वां यज्ञ अभी पूरा होने ही वाला है, तो आप सोच सकते हैं कितना तेज उसके अंदर रहेगा, मानो वो वातावरण था ना सब वहां का, जितना यज्ञ मंडली बनी हुई है सब लोग बैठकर स्वाहा कर बड़े बड़े मंत्र बोल रहे हैं, हजारों ऋषि हजारों यज्ञ कुंड में अर्पण कर रहे हैं घी की आहुति, तो वो ऐसे एक तेजी भरा हुआ था सब जगह पर एफलजेंस, लेकिन जैसे वामन देव प्रवेश करते ना उनका इतना तेज था कि ये सारा तेज अंधकार की तरह नजर आने लगा, इट लुक लाइक डार्कनेस। तो दो कारण है, एक वामन देव का तेज इतना श्रेष्ठ था कि वो बाकी का तेज, जैसे कि हम समझो अभी मैं 2000 वॉट का बल्ब यहां पर लगाया तो ट्यूबलाइट तो आपको दिखेगी नहीं, या तो सूरज सुबह आ गया तो सारे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आप 50 लाइट लगाओ, 1000 लाइट लगाओ, 1,00,000 लाइट लगाओ, लेकिन सूरज के आते ही सारे बल्ब जो है ना एकदम क्षीण हो जाएंगे, है पावर उसके अंदर, लाइट भी रात को दिया था उसने, लेकिन सूरज के आने से सारे बल्ब जो है एकदम क्षीण नजर आते हैं, उस तरह से इनका तेज बहुत था उनका तेज कम था। लेकिन और एक कारण था, भगवान विष्णु के आते ही उन सारे ब्राह्मणों का तेज भगवान ने इसे छीन लिया, तो वो एकदम स्वतः ही ऐसे खड़े हो गए आपको स्प्रिंग की तरह, आदर के साथ खड़े हो गए हाथ जोड़कर, उन्होंने सबने भगवान को वंदन किया, तो बलि महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए, इतना तेज वाले बालक, बड़े विद्वान बड़े साक्षात्कारी ब्राह्मण होंगे, तो बलि महाराज आते हैं उनको वंदन करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप हमारा भाग्य है कि आज हमारे 1000वें लास्ट यज्ञ में आप जैसे तेज पुंज ब्राह्मण यहां प्रकट हुए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि 999 और विश्वजीत यज्ञ में भी ऐसे ब्राह्मण आप जैसे नहीं आए थे, तो ये आप आए हैं इसका मतलब मेरा यज्ञ सफल है आज, इसलिए ब्राह्मण देवता आप मांगिए, आपको जमीन चाहिए, गाय चाहिए, स्वर्ण चाहिए, कौन से वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, मैं समर्थ हूं आपको देने के लिए, आपको जो इच्छा है वो मांग लो, क्योंकि यज्ञ में ब्राह्मणों को दान किए बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं होती है, और आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को मुझे देने का दक्षिणा देने का लाभ मिल रहा है, स्वतः ही मिल रहा है, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप स्वतः ही आ गए, मेरे पर कृपा है आपकी, तो आप कृपा करके दिल से मांगिए, संकोच मत कीजिए। तो ब्राह्मण देवता क्या बोलते हैं, मुझे ना 3 पैर जमीन की जरूरत है, मेरे यज्ञ को करने के लिए मुझे 3 पैर की जरूरत है, वो मेरे पैर के नाप से। तो ये सुनते ही वो बलि महाराज कहते, अरे मुझे लगा था इससे आप दिख रहे हो, तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा आपके अंदर, बहुत ज्यादा ज्ञान साक्षात्कार अनुभूति होगी, मेरे बारे में भी आप जानते होंगे, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास 3 लोकों का राज्य है, 7 द्वीप मेरे पास में है, सब जितना विश्व है ब्रह्मांड है वो पूरा मेरे कब्जे में है, सारी प्रॉपर्टी मेरे पास है, आप चाहे तो 1 लोक मांग लो उसमें से, 1 प्लैनेट आई विल गिव यू। तो वो क्या बोलते हैं, ओके 5 मिनट में समाप्त करेंगे ये बात बताकर, वो कहते हैं कि अगर आप मुझे मेरी जरूरत के ज्यादा कुछ मांगोगे ना, दे दोगे, तो मैं संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे आपको 7 महाद्वीप है, एक आप दोगे तो तुरंत ही मुझे और 6 प्राप्त करने की इच्छा होगी। मनुष्य को उसके पास जितना प्रारब्ध से मिल रहा है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए, और प्रारब्ध से जो मिल रहा है उसमें जिसको संतुष्टि नहीं है वो दुनिया में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कारण क्या उसका? क्योंकि हमारे पास ये है, हमको वो चाहिए। ऐसी जब प्रवृत्ति होती है तो वो मिलने के बाद भी और कुछ दिखता है, वो भी चाहिए। इसलिए आपने, आपके पास जितना है उसमें आप संतुष्ट नहीं है तो आपको तीनों लोकों की भी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, फिर भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। और इसका प्रूफ तो आप ही खुद हो, क्योंकि तो आपके पास तीनों लोकों की संपत्ति प्राप्त है, फिर भी आप इंद्रप्रद प्राप्त करने के लिए सौ यज्ञ कर रहे हो। कहीं भी दूर इतने साल में कोई देवता हमने आपके आया क्या? डर के मारे सामने भी नहीं आ रहे, आप आराम से अपना राज्य कर रहे हो, फिर भी आपको इच्छा है कि वो आके मुझे सलाम करें और मुझे इंद्र का सम्मान दे दें। जब आप ही तीन लोगों का साम्राज्य प्राप्त करके संतुष्ट नहीं है तो मुझे क्यों ललचा रहे हो, ये लो वो लो करके? बेस्ट यह है कि जो मुझे चाहिए वो दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये बात पर हम लोग कथा हमारे रुकाते हैं, अगली बार यहीं से आगे की कथा करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कभी भी हमें अपने प्रारब्ध से अधिक प्राप्त नहीं होता है। आप कितना भी कोर्सेस करो, हाँ एग्जाम दे दो, या जो चाहे वो करो, आप आपके यहाँ पर जितना लिखा है ना उतना ही धन आपको मिलेगा, उतना ही यश मिलेगा, उतनी कीर्ति मिलेगी, उतना ही प्राप्ति मिलेगी, उतना अधिकार, पावर, कंट्रोल, जो भी आप बोलो दुनिया में आपको चाहिए वो उतना ही मिलेगा जितना आपने नसीब में लिखा है, और उसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको। और एक बात इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको जितना आपके नसीब में उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा, और वो समय के पहले भी नहीं मिलेगा। समझो आपके भाग्य में लिखा है कि आप 65 ईयर्स पे प्रधानमंत्री बन जाओगे, समझो, समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। और आप कहेंगे 65 क्यों, मैं भी 35 हूं, अभी मैं ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता हूं, मुझे अभी बना दो, तो नहीं बन सकते आप। अगर 60 एज में लिखा है कि आप करोड़पति बन जाओगे और आज आप लोन फेड़ रहे हो अभी भी आपका एक फ्लैट का, तो आप बोलेंगे आज जरूरत है मुझे उसकी, आज मैं लोन फेड़ूंगा तो कम से कम अच्छी तरह से एक बड़े घर में जाऊंगा, तो आज नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है? जब मिलना है तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। अगर आपको पता चलता है कि मैं बहुत धनी होने वाला हूं तो आपको लगता है कि आज ही मिलना चाहिए, कल क्यों, मेरे नसीब में है ना वो, मैंने उसके लिए कर्म किया है ना, नहीं, वो कर्म का फल है कि उसी उम्र में मिलेगा। तो उसी उम्र में मिलेगा। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को समय से पहले ज्यादा भाग्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबसे मन की पवित्रता का एक मार्ग है, उसको कहते हैं समाधान। मन को पवित्र करना है, मन को शुद्ध रखना है, तो उसका अलंकार क्या है? समाधान। अगर समाधान रहेगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, और मन अगर असंतुष्ट है तो फिर वो पाप करने का सोचता है, उसका गुस्सा आता है, को जेलसी, उसको द्वेष पैदा होता है। ये सारे विकार तक कब पैदा होते हैं? जब आप संतुष्ट नहीं हो। अगर आप संतुष्ट हो तो आपके मन में कोई विकार पैदा नहीं होंगे, यही मन की शुद्धि का रहस्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।